लक्ष्य ईशिका को काम पर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, जबकि वो लाइब्रेरी में जाना चाहती थी। ईशिका ने उसे बताया कि उसने फ्राइडे को ही उस इशू को सॉल्व कर दिया था। उसने लक्ष्य को मेल भी किया था। लक्ष्य को मेल ब्लैंक दिख रहा था, तो वो दौड़कर वापस गया और अपना लैपटॉप ऑन करके मेल को वापस देखा। उसके साथ एक अटैचमेंट लगा हुआ था। जैसे ही लक्ष्य ने उसे डाउनलोड करके देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो अपनी आंख मसल कर उसे गौर से देखने लगा। जिस टेक्निकल इशू को सॉल्व करने में उन्हें एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया था, उसे ईशिका ने कुछ घंटे में सॉल्व कर दिया था। लक्ष्य हर एक कोड को गौर से पढ़ने लगा। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसे टाइम लग रहा था। इसी बीच ईशिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो, ईशिका ने सिर हिलाकर कहा और लिफ्ट के अंदर एंटर करने लगी। वहां लिफ्ट में पहले से ही काफी सारे लोग थे। उसके आने के बाद एक दो लोग और आए और लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से आवाज करने लगी। उस लिफ्ट में सभी एम्प्लॉयज R&D डिपार्टमेंट में काम करने वाले ही थे। रिसर्च के लिए उन्हें अक्सर लाइब्रेरी जाना होता था। सब अजीब नजरों से ईशिका की तरफ देखने लगे। उनमें से किसी एक ने काफी निर्दयता से कहा, ईशिका तुम बाहर निकल जाओ। ऐसे लग रहा था जैसे वो ईशिका की किसी बात से नाराज हो। उसने काफी रूखे तरीके से कहा था। ईशिका ने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैं आखिर में नहीं चढ़ी थी, जो आखिर में आया था उन्हें बाहर निकालो ना। हाँ जानते हैं, ऐसी जगह पर पहले आओ और पहले पाओ वाली बात लागू होती है, लेकिन हम सब जल्दी में हैं और हमें काम भी है। तुम्हें कोई काम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम को समझो और बाहर जाओ, उस लड़के ने सख्ती से जवाब दिया। बाकी सब उसका सपोर्ट करने लगे। उनमें से एक लड़की बोली, ये सही कह रहा है, तुम तो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने के लिए ही तो जा रही हो, थोड़ी देर रुक कर चली जाओगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। चलो अब बाहर निकलो भी, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, दूसरे लड़के ने कहा। तुम्हारी वजह से अगर रोहन सर ने हम पर गुस्सा किया तो हम तुम्हारा नाम ही लेने वाले हैं, पहले ही वो इतने परेशान हैं, एक और आदमी ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ईशिका से कोई दुश्मनी निकाल रहे हों। सब ईशिका को बाहर निकालने के सपोर्ट में ही थे। ईशिका को उनकी इस नाराजगी का मतलब नहीं समझ आया। वो बिना कुछ बोले लिफ्ट से बाहर आ गई थी। ईशिका ने बाहर जाकर इधर उधर देखा। राजवंश एम्पायर में टोटल 10 लिफ्ट थीं, लेकिन सभी बिजी चल रही थीं। ईशिका ने सिर हिलाकर कहा, लगता है फिर से किसी इशू में उलझ गए होंगे, तभी सारे रिसर्चर्स इतना गुस्सा थे। कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेती हूँ। ईशिका वहां खड़े होकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। ऊपर लिफ्ट में जाने वाले लोग बिल्कुल शांत थे। अचानक से उनमें से एक ने कहा, हमने उसके साथ ज्यादती तो नहीं की ना, मुझे बुरा लग रहा है, हमने उसे लिफ्ट से निकाल दिया था। हमने जो किया वो बिल्कुल सही था, वो लापरवाह लड़की है, खुद तो कुछ करती है नहीं और हम जो करते हैं उसमें उसे बेवजह का क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि वो हमारी टीम मेंबर है, दूसरी लड़की ने सख्त शब्दों में कहा। हाँ, हमारी वजह से उसे बोनस भी मिलेगा, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं, ज्यादा मत सोचो, काम पर ध्यान देते हैं, रोहन सर को हमारी जरूरत है, एक लड़के ने जवाब दिया। ईशिका के बर्ताव के आधार पर उन्होंने एक दूसरे को यही तसल्ली दी कि उन्होंने जो भी किया वो सही था। वहीं दूसरी तरफ ईशिका लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। वहां जाते ही वो सीधे उस किताब की तरफ बढ़ी जो उसने छुपाई थी। ईशिका उस किताब को ढूंढते हुए बोली, उस बुक में वो सभी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए, दादी ठीक हो जाएगी तो वही सारा सच बता सकती है। पर अफसोस, ईशिका को वो किताब वहां नहीं मिली जहां उसने छुपाई थी। वो हैरान रह गई। उसने हड़बड़ी से चारों तरफ देखा और फिर हर एक शेल्फ में जाकर उसे देखने लगी। उसे वो किताब फिर भी नहीं मिली थी। इस लाइब्रेरी से किताब आसानी से बाहर नहीं ले जाई जा सकती है, फिर अचानक से किताब कहाँ गायब हो गई, ईशिका हैरानी से बोली। फिर उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ तो वो बोली, यहाँ से सिर्फ एक ही इंसान किताब को आसानी से लेकर जा सकता है, कहीं अभिमन्यु ने तो उसे नहीं लिया, उसने देख भी लिया था जब मैंने उस बुक को वहां रखा था, जरूर उसी ने लिया होगा, उसे मुझ पर यकीन भी नहीं है। ईशिका का चेहरा उतर गया था, क्योंकि वो किताब अभिमन्यु के पास थी, चाहकर भी वो उसे लाने नहीं जा सकती थी। वहीं अभिमन्यु अपने केबिन में बैठकर उसी किताब को देख रहा था। वो एक मोटी किताब थी जो न्यूरोसाइंस के बारे में थी। अभिमन्यु को अपनी दादी के हेल्थ के बारे में अच्छे से पता था। वो किताब काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन ईशिका उस किताब को क्यों पढ़ रही थी ये उसे समझ नहीं आया। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता है, क्या इसने एक न्यूरोसाइंस की बुक हासिल करने के लिए राजवंश एम्पायर को ज्वाइन किया है या कोई और मकसद है। अभिमन्यु गहरी सोच में डूबा था, तभी पृथ्वी वहां पर आया। उसने आते ही ईशिका की सारी हरकतों की जानकारी अभिमन्यु को दी। सब कुछ बताने के बाद वो बोला, मिस सिंघानिया इस बात का पूरा फायदा उठा रही है कि आपकी दादी उन्हें पसंद करती है, वो अपनी मर्जी से काम करती है, जहां सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं वहां वो टाइम पास करते हुए इधर उधर घूम रही है, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आपने उसे एक ऐसे फील्ड में जॉब दी है जो फ्यूचर में उसके काम आ सकता है, पर वो इसका फायदा उठाने के बजाय फ्री में सैलरी लेना चाहती है, वो यहाँ काम करने के लिए नहीं आई है, अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा। पृथ्वी कन्फ्यूजन से अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु ईशिका की तरफदारी कर रहा है, वो इसे अपनी गलतफहमी समझकर भूल जाना चाहता था। फिर पृथ्वी की नजर अभिमन्यु के हाथ में पकड़ी किताब पर गई। उसने उसे देखकर कहा, ये बुक हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं लग रही है, गलती से यहाँ आ गई है क्या? पृथ्वी के कहते ही अभिमन्यु ने किताब की तरफ देखा। उसे अभी भी याद था कि इस बुक को लेकर ऋषिका कितनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो नीचे तक गिर गई थी। मैं मिस सिंघानिया को ऊपर बुलाऊं? पृथ्वी ने पूछा। अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अचानक उसे कुछ याद आया। कुछ देर पहले ऋषिका के नीचे गिरते ही अभिमन्यु ने ऋषिका को अपनी बाहों में थामा था। ऋषिका उसके बिल्कुल करीब थी और पहली बार उसने ऋषिका को टच किया था। वो सब सोचकर अभिमन्यु के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। अभिमन्यु ने किताब को बंद करके नीचे रखते हुए कहा, हाँ ऐसे ही आ गई थी और इसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है। अभिमन्यु ने पृथ्वी को भेज दिया था। वहीं ऋषिका उस किताब के बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन बोली, मुझे वो किताब किसी भी हालत में चाहिए, मुझे अभिमन्यु के पास जाकर वो बुक लानी होगी। ऋषिका जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे भी वो मोमेंट याद आ गया जब कुछ देर पहले अभिमन्यु ने उसे थामा था। उसका चेहरा लाल हो गया और वो वापस दूसरी तरफ पलटकर बोली, नहीं मुझे नहीं होगा, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, मैं बाद में ले लूंगी बुक को, अभी उससे दूर रहना ही ठीक है। ऋषिका वापस से R&D डिपार्टमेंट में आ गई। वो लिफ्ट से निकलकर आगे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा रोहन और कुछ टीम मेंबर्स खुद को एक्टिव रखने के लिए कॉफी पी रहे थे। ऋषिका ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर बेपरवाही से आगे जाने लगी। उसे इतना लापरवाह देखकर रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो तेज आवाज में बोला, ऋषिका ये ऑफिस है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं जो तुम इधर से उधर घूमती रहती हो। रोहन का साथ देते हुए एक लड़का बोला, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब अपने काम में इतने बिजी हैं कि छोटे मोटे काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए।
अगर तुम हमारे साथ प्रोजेक्ट में शामिल होती हो तो तुम्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा, रोहन ने उसे काफी प्यार से समझाते हुए कहा। रोहन भले ही ऋषिका से नॉर्मली बात कर रहा हो लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाकी टीम मेंबर्स उसे बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। हम सब एक टीम मेंबर्स हैं, अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो हम सबको बोनस मिलेगा और उनमें तुम भी हो। तुम हम सबसे कम एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी हमने कभी तुम्हें छोटा नहीं समझा। क्या तुम बिना कुछ काम किए ही हमारी कामयाबी में हिस्सा पाना चाहती हो? रोहन के पास खड़ी एक लड़की ने कहा, तुम्हें यहाँ सिफारिश के दम पर नौकरी मिली है लेकिन फिर भी हमने यही सोचा कि तुम्हें अच्छा नॉलेज देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, एक लड़के ने कहा। ऋषिका चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर उनसे पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ मैं किस तरह से तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ? वो लड़का जवाब में बोला, ठीक है, तुम टेक्निकल इश्यूज में हमारी हेल्प नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है, पर कम से कम छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हो। हमें बहुत सारी बुक्स की जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ प्रिंट करना होता है, कॉफी चाहिए होती है, तुम हमारे लिए ये सब काम कर सकती हो। ऋषिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर पूरी सख्ती से कहा, आई एम सॉरी पर ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। ऋषिका ने काफी जगह काम किया था तो वो जानती थी कि जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता था अक्सर उनसे इसी तरह के छोटे मोटे काम कराए जाते थे। राजवंश एम्पायर से मिलने वाली सैलरी ठीक ठाक थी और बदले में उसने फ्राइडे को 3 बड़े काम किए थे। उसके हिसाब से वो फ्री में सैलरी नहीं ले रही थी, उसके बदले में उसने अच्छा खासा काम किया था। ऋषिका को अंदाजा नहीं था कि वो सब लोग उस काम को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं जो उसने 2 दिन पहले ही निपटा दिया था। ऋषिका का जवाब सुनकर वो लड़का गुस्सा हो गया। वो बोला, कैसी लड़की हो तुम, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कहीं की राजकुमारी हो और हम तुम्हारे अंडर काम करने वाले सेवक। सब ऋषिका से पहले से ही नाराज थे, अब वो उसके बर्ताव से और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। रोहन उसकी मदद करना चाहता था पर ऋषिका ठीक से पेश नहीं आ रही थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ऋषिका के लिए नक्श से पंगा लिया था। रोहन का गुस्सा अब उसके काबू में नहीं हो रहा था। वो ऋषिका पर चिल्लाकर बोला, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो चले जाओ यहाँ से, हमें ऐसी शख्स की कोई जरूरत नहीं है जो बिना काम किए ही मुफ्त में बोनस लेना चाहता हो। ऋषिका ने रोहन की तरफ देखा, उसे लगा नहीं था कि वो उसके साथ इतना रूठ हो जाएगा। वहीं लक्ष्य अभी तक ऋषिका के सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को समझ रहा था। वो काफी देर से इस अटैचमेंट में खोया हुआ था। जब उसे सब समझ में आ गया तो वो खुशी से जोर से उछला। लक्ष्य के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी चौंक गए थे। रोहन लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी उसकी नजर ऋषिका पर पड़ी तो वो सख्ती से बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तुम जिस किसी की भी सिफारिश पर आई हो उसी के पास बैठो और उसका काम करो, मुझे अपनी टीम में तुम्हारे जैसे मेंबर नहीं चाहिए, मैं वापस आऊं तब तक तुम मुझे यहां दिखनी नहीं चाहिए। रोहन ने ऋषिका को काम से निकाल दिया था। अब गलतफहमी का हो या कुछ और, देखते हैं लक्ष्य इसका क्रेडिट खुद लेता है या फिर ऋषिका की सच्चाई बताता है। इतने कम दिनों में ही सब ऋषिका से परेशान हो गए। सोचो रोहन ने काम से निकाल दिया तो ऋषिका को अभिमन्यु के साथ काम करना होगा और ये तो पृथ्वी को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।